उन्हें कोई इस बारे में नहीं बताएगा। अचानक ही सुभाष जी की आवाज़ सुनकर सभी चौंक गए। आरवी ने हैरान परेशान नज़रों से उन्हें देखने लगी। क्यों डैड, उन्हें पता चलेगा कि अब आप जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े होने और चलने लगेंगे तो वो बहुत खुश होंगे, फिर आप उन्हें बताने से मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जब ठीक होने के बाद हम अचानक उनके सामने अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने पैरों पर चलकर उनके पास जाएंगे तो क्या भाव होंगे उनके चेहरे पर। उनके चेहरे पर तब जो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आएंगे, उसे देखने के लिए हमें अभी उनसे ये बात छुपानी होगी, और हम चाहते हैं कि आप सब इसमें हमारा साथ दें। सुभाष जी की बात सुनकर सबने मुस्कुराकर हामी भर दी। आरवी किचन में चली गई, बाकी सब वहीं बैठे बातें करने लगे। डिनर पर सबको शान का इंतजार था, पर शान को देर हो गई थी। अंशु सुबह से खेलते खेलते थक गई थी, आज वो दोपहर में भी नहीं सोई थी तो उसको नींद आने लगी। अर्पिता जी के कहने पर आरवी ने उसको खाना खिला दिया और सुलाने के लिए रूम में ले गई। करीब 10:45 बजे बाहर से गाड़ी के लुकने की आवाज़ आई। आरवी अब शान की गाड़ी की आवाज़ को पहचानने लगी थी। वो समझ गई कि शान आया है, तो अंशु को अच्छे से सुलाकर बेड से उठ खड़ी हुई और गेट की तरफ बढ़ गई। देर होने की वजह से बाकी सब भी अपने कमरों में चले गए थे, पर आज उन्होंने डिनर नहीं किया था। आरवी भागती हुई नीचे पहुंची। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, सामने से आते शान पर उसकी नज़रें चली गईं, जिसका चेहरा ही ये बताने को काफ़ी था कि उसका मूड खराब है। शान ने उसको देखकर भी अनदेखा कर दिया और टाई की नॉट ढीली करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पर जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, आरवी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और आदतन हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। शान ने सख्त लहजे में कहा, उसकी ज़रूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो उसके बगल से निकलकर ऊपर जाने लगा। आरवी एक सेकंड को खामोशी से उसको देखती रही, फिर पीछे से उसको देखते हुए बोली, काम का गुस्सा खाने पर नहीं निकालते, अगर खाएंगे ही नहीं तो काम कैसे करेंगे? ये ज़िंदगी है, ज़रूरी नहीं यहाँ सब आपकी मर्ज़ी से हो, पर अगर कुछ हमारी मर्ज़ी के उलट होता है तब भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर शान के कदम रुक गए। उसने पलटकर सवालिया नज़रों से उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो कि ये सब कहने का क्या मतलब। उसके सवाल को समझते हुए आरवी ने मुस्कुराकर आगे कहा, आपका चेहरा बता रहा है कि आज आप जिस काम के लिए गए थे वो शायद आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, इसलिए आपका मूड उखड़ा उखड़ा है और इसीलिए आप खाना नहीं खाना चाहते। पर आज काम खराब हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा काम खराब ही होगा, फिर इतना गुस्सा या दुखी होने का क्या मतलब? आज नहीं तो कल काम बन जाएगा। चलिए अब गुस्सा छोड़िए और फ्रेश होकर आइए, आज किसी ने भी डिनर नहीं किया है तो सब साथ में डिनर करेंगे। उसकी बातों से पहले तो शान एकटक उसे देखने लगा। कितनी आसानी से उसने उसके गुस्से को शांत कर दिया था, जबकि वो खुद अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाया था। फिर उस पर से नजरें हटाते हुए बोला, अंशु ने भी अभी तक नहीं खाया, लेट हो गया है, तुम्हें उसे खाना खिलाकर सुला देना चाहिए था, कल उसको स्कूल भी जाना है, उन्हें मैंने खाना खिलाकर सुला दिया है। आपके साथ खेलने के चक्कर में दोपहर में भी नहीं सोई थी तो 8 बजे से ही नींद में झूल रही है, इसलिए मैंने उन्हें सुला दिया। आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाकर बाकी सबको बुला लेती हूँ। आरवी की बात सुनकर शान ने हामी भरी, वो वहां से चला गया। आरवी भी मुस्कुराकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग एरिया में इकट्ठे हो रखे थे। कुछ देर में शान भी वहां पहुंच गया और बैठते हुए उसको लेट आने के लिए सॉरी भी कह दिया, तो सब मुस्कुराकर खाना शुरू किया। डिनर करते हुए ही शान ने सवाल किया, डॉक्टर मेहरा आए थे, क्या कहा उन्होंने? उसका सवाल सुनकर सबके हाथ हवा में ही रुक गए और नजरें सुभाष जी की तरफ चली गईं। सुभाष जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वही जो हमेशा कहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में है। आपकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है? शान ने थोड़ी हैरानी से सवाल किया, तो उन्होंने आगे कहा, ना के बराबर है, पर आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं, हमारा परिवार हमारे साथ है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर शान ने कुछ परेशान होकर कहा, मैं डॉक्टर मेहरा से बात करूंगा, आपकी दवाइयाँ चेंज करनी होगी, शायद तब कुछ फर्क नजर आए। नहीं बेटा, आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही उनसे कह दिया है कि सबसे ज्यादा असरदार दवाइयां ही सुभाष को दें, हम जल्दी उन्हें उनके पैरों पर खड़ा देखना चाहते हैं, और उन्होंने भी कहा है कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। सुयश जी ने बात को संभाल लिया और शान उनसे कॉन्विंस भी हो गया। तब कहीं जाकर सबने चैन की सांस ली। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। छाया बर्तन लेकर किचन में चली गई और उसने जिद करके आरवी को कमरे में भेज दिया। आरवी कमरे में आई और अपने कपड़े चेंज करने के बाद अपनी तरफ जाकर लेट गई। शान अब तक वहां नहीं आया था, जिस वजह से आरवी की नजरें रह रहकर शान की स्टडी रूम की तरफ जा रही थी जो अंदर से बंद था। आखिर में उसका इंतजार करते करते ही आरवी की आंख लग गई। आधी रात को अचानक ही आरवी की आंख खुल गई। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया था जिस वजह से वो डरकर उठ गई थी। आंखें खोलते ही वो उठकर बैठ गई और घबराई नजरों से अपने आसपास देखा तो बगल में अंशु और उसके पास शान सो रहा था। वो शान के कमरे में थी। ये देखकर उसने गहरी सांस भरी, फिर अपने दुपट्टे से अपने पसीने को पोंछते हुए खुद से ही बोली, इतने वक्त में पहली बार मैंने इतना अजीब सपना देखा है, पर आज अचानक मुझे सपने में विहान क्यों नजर आया? मैं तो उसे भूल ही गई। क्या कर रहा होगा वो? खामोश तो नहीं रहेगा। उसने कहा था वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। मैं अपनी जिंदगी के इस पहलू को कैसे भूल गई? मैं ये कैसे भूल गई कि मुझे किसी की पत्नी कहलाने का हक नहीं है? मिस्टर मल्होत्रा पहले ही मुझसे नफरत करते हैं। इतनी मुश्किल से उन्होंने मुझ पर थोड़ा विश्वास किया है। जिस दिन उन्हें मेरे अतीत का राज पता चलेगा, उनका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा और मेरे लिए उनकी नफरत और बढ़ जाएगी। आज तक उन्होंने मेरे बारे में जो भी घटिया बातें की हैं वो सब सच साबित हो जाएंगी और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो मुझे इस घर से निकाल देंगे, मुझे अंशु से दूर कर देंगे। नहीं, मैं ये सच कैसे भूल सकती हूँ? अतीत का वो काला सच जिस दिन सामने आएगा, अपने साथ वो एक तूफान भी लाएगा जो सब कुछ तहस नहस कर जाएगा। मुझे इस घर से अंशु से दूर कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए। इस रिश्ते को तोड़ कर रख देगा जो अभी तक ठीक से जुड़ा भी नहीं है। नहीं, इससे पहले कि उन्हें सब कहीं और से पता चले और वो मुझे धोखेबाज समझे, मुझे उन्हें सब सच खुद ही बताना होगा। पता नहीं वो मुझ पर विश्वास करेंगे भी या नहीं, पर मुझे उन्हें सच बताना ही होगा। अगर उन्हें कहीं और से पता चला तो उन्हें लगेगा कि मैं उन्हें और सबको धोखा दे रही हूँ। आरवी बहुत परेशान लग रही थी, नींद तोड़ चुकी थी, तो वो उठकर बैल्कनी में चली गई और वहां लगे काउच पर अपनी टांगों को फोल्ड करके बैठ गई। काले बादलों के पीछे छुपे चांद को खाली आंखों से देखने लगी। मौसम अच्छा था, हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। लॉन में लगे पेड़ हवा में झूम रहे थे, बादल छाए हुए थे, एक भी तारा नहीं नजर आ रहा था, बस चांद था जो रह रहकर बादलों के पीछे छुप जाता था, मतलब बादलों से लुका छुपी खेल रहा था।
हवा से आरवी के खुले घुंघरेले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने अपनी उंगलियों से उन्हें पीछे किया और इस पल ने उसको उसकी अतीत की यादों में खींच लिया। टू बी कंटिन्यूड।